in the bank. Bhisham Pitama went to Sindhu to conquer. And that he met to Bhisham Pitama. And he requested that he should help me in marrying my daughter. He told that there is a very beautiful young person and he is Krishna. You can marry them.
All of them.
All of them. Then he came here. At that time Krishna was in Dwarka. He went to Dwarka with all her daughters, his daughters. But he heard that Krishna is now in Kamyavan. So he came here and married all the daughters to Krishna.
What is the name of
him? In them, the eldest was Vimala Devi. And he has done so much hard authority. So Krishna was moved and by her authorities, Krishna was bound to marry all of them. She was so chaste lady that on his name, this kund was known as Bimal Kunda.
King's name was also Bimal, and his daughter's name was Bimal.
King's name was Bimal, and her daughter, eldest daughter's name was
Bimala.
Bimala. And all daughters were married to Krishna. And then they took them and they went to Dwarka and they were
16,000
queens. They were. And in one Brahma day, they were the queens and daughters of so many kings. And they were caught held by Narakasur. And he defeated Narakasur. And by their request, Krishna married with them.
It is also 16,000.
So they were in other Jew. And this is the other. Kalpabhed.
Kalpabhed.
The difference of Kalpa. কারণ কৃষ্ণ ব্রজেতে থাকাকালে কারোর সঙ্গে বিবাহ করেনি, এই জন্য এখানে বিবাহ কৃষ্ণের সঙ্গে হয়ে তারা যে বিবাহ করবে কৃষ্ণ নন্দনন্দন ই করতে পারে না, এরা বলে কিন্তু আমি এটাকে মানি।
কৃষ্ণ বিবাহ নেই করেনি,
নন্দনন্দন নেই বিবাহ করেনি, বিবাহ নেই কিয়া কবি কিসি সে,
নন্দনন্দন নে বিবাহ নেই কিয়া,
ইয়া ব্রজ মে নেই কিয়া। फिर वो देवकी वसुदेव के पुत्र होकर के तब द्वारका में उनका विवाह।
ये जो विमला देवी का विवाह ये आप मानते नहीं है?
मानते हैं वसुदेव द्वारका से आकर के विवाह करके ले गए। यहाँ पर विवाह होने से सिद्धांत विरोध है,
रसावास हो जाएगा। जो लड़का है ना राजीव,
Krishna have married queens in Braj.
अनुमति सखी पुत्रमत्र स्वरूपम् रूपम् तस्याभिजोरितम् माधुरीं गोस्तवातिम् राधाकुण्डम् गिरिवरमहो राधिका माधवासम् प्राप्तो यस्य प्रसीति कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनम्ने गौरतिसे अङ्गश्यामलिनछटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जड्डञ्जागुडरुचिसंविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया। Vrindaranya Nivasinam Hridilasat Dhamabhiramodaram Radha Skanda Niveshito Jalabhujam Dhyayem Dhamu Yam Prabhrajantam Anupetam Apetakrityam Dvaipayano Virahaka Taraya Juhava Putrepi Tanmayataya Sarvobhinedu Tang Sarvabhutaridayam Munimanukosmi Tavai Vasmi Tavai Vasmi Najivami Tvaya Vina Iti Vigyaya Radhe Tangnaimamucha Yatakin Karis Bausa Khaluka Kubani Nityam Parasya Purusasya Sikhannamol Jasya Kadarasa Nidhe Drishubhanu Jaya Tatakeli Kunya Bhavanam Ganamarjanisya
Abhi यहाँ के महंत जी ने आपको काम में बन की कथाएं सुनाई. हमने थोड़ा थोड़ा पहले भी कुछ बतलाया है, संक्षेप में कुछ और बतलाने की चेष्टा करूंगा. हम लोग ये काम में बन है, जो आता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है. कामेश्वर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं. किंतु उस कामेश्वर की भी कामनाओं को कौन पूर्ण करता है या करती है? श्रीमती राधिका जी उनकी कामनाओं को भी पूर्ण करते हैं. उन्होंने ही कृपा करके वृंदावन में उनको रखा और उनकी कृपा करके उनको गोपीश्वर बना दिया और कहा जी अच्छा यहाँ पर बैठ करके लोगों की कामनाओं को पूर्ण करो. किंतु वास्तविक में विश्व ब्रह्मांड की जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उनकी भी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये श्रीमती राधिका जी हैं. इस चीज को समझना चाहिए. तो ये यदि ऐसी बात है तो हम लोग भी कामना क्यों न कर लें? तो हम लोग यही कामना करेंगे. यत किं करी सुबहुसा खलुका दुबान. जो परम परमेश्वर हैं, शिखंड मौले मोर मुकुट को धारण करने वाले हैं, बंसी वादन करने वाले हैं, चर अचर को मोहित करने वाले हैं, जिनकी ध्रुव छेद से कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांडों का प्रलय सीजन और स्थिति रहती है, ऐसे ऐसे जो करने वाले हैं ईश्वर लोग, वो सब कृष्ण से निकलते हैं. ऐसे ये हैं पर ब्रह्म के भी पर ब्रह्म. ये वृंदावन में राधा जी के कुंज पर उनसे मिलने के लिए गए. राधा जी ने कहा कि आज कोई काला व्यक्ति, कोई भी काली चीज हमारे सामने आने नहीं चाहिए. कोई आए उसे भगा दो. राधा जी ने अपने केशों को फूलों से ढक दिया, सफेद सफेद बेली चमेली जूई से. काला का कपड़ा, पाड़ का कपड़ा या साड़ी या लहंगा नहीं आने पाए. काले से ये हमको कुछ अरुचि हो गई है, इन पर विश्वास नहीं. कहते हैं एक करते हैं, इसलिए मंजरियों को, अपनी सखियों को आदेश दिया. वेश बदल करके भी, स्त्री का वेश बदल करके भी आए, कैसे भी आए, आज आने मत देना. इसलिए जत किंग करीस बहुसह खलुका कुबानी. कृष्ण यहां पर आकर के हाथ जोड़ करके गोपियों के पैया पड़ते हुए और बार बार गोपियों से निवेदन कर रहे हैं. किनकी? उनकी किंकरियों से, रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि से. कहें जो थोड़ा सा जाने दो, उनकी सेवा का सुयोग मुझे कर दो. और गोपियां कहें नहीं, आज आप प्रवेश, आप दूर रहिए. आज आपको देखना नहीं चाहती, आप तरकिए यहाँ से। जतकिं करुष बहुसा खलुका अभिमानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। जितने भगवत अवतार हैं सबके ये शिखंड मौले हैं, ये कृष्ण ब्रह्म के भी परब्रह्म हैं, परमात्मा के भी ये मूल हैं। और ऐसे प्रभु हाथ जोड़ करके उनकी किंकरियों को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसे हमको जाने दो, और वो उनको जाने नहीं देती है, उनकी पहियां पड़ रहे हैं। तो राधा जी की महिमा कैसी होगी? मैं हमारी हम लोगों की यही कामना है प्रबोधानंद सरस्वती जी का कि हम राधा जी के कुंज में झाड़ू देने वाली जो झाड़ू है उसकी एक सीक भी बन जाए, और उस सीक से राधा जी के कुंज में जिसको कृष्ण को आने नहीं देती और कृष्ण मचलते हैं वहां आने के लिए, किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे, उस कुंज में झाड़ू देने के लिए एक सीक बन जाऊं, और यदि वो सीक उसमें झाड़ू दे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, ये हमारी कामना है। कौन कह रहा है? हम उनके सेवक वर्ग हैं, इसलिए हमारी भी वैसे ही कामना है। सिरूप मंजरी कराच्य तपाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजाति तमस्तिकाया हामोदतः कनक गौर पदार विंदम संवाहनानि सनकई तब किं करिष्ये। रघुनाथ दास गोस्वामी जी रूपानुगम में एक श्रेष्ठ है, वो प्रार्थना करते हैं सिरूप मंजरी कराच्य तपाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्ति तमस्तिकाया। वन विहार से कुछ परिक्लांत हो गई हैं, परिशांत हो गई हैं श्रीमती राधिका जी, उन्होंने कृष्ण की गोदी में अपना सिर दे दिया और लेट गई, और कृष्ण बड़े प्यार से उनके केशों को सुलझाते हुए और अंगों पर अपना हाथ देते हुए आज कह रहे कि आज देखो तो हमको कैसा सुजोग जो जीवन में चाहते हैं नहीं मिलता, आज अपने से ये सुजोग लाभ हुआ है। और रूप मंजरी जी श्रीमती राधिका जी की चरण की सेवा कर रही हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मैं रूप रति मंजरी के रूप में क्या मेरा ऐसा सौभाग्य होगा जो रूप मंजरी की सेवा की जो जूठन है, जूठन क्या सेवा कर रही हैं, और वो ऐसे बुलाएंगी आकर कहेंगी तुम चरण की सेवा करो। जिस चरणों में कृष्ण स्वयं महावर पहनाते हैं, कभी सिर पर रखते हैं कभी यहां रखते हैं, ऐसे श्रीमती राधिका जी के चरण कमलों को रूप मंजरी कहेंगे जिससे इसको ग्रहण करो और सेवा करो। मैं जरा विजन तो कर दूं, ऐसा हमारा कब सौभाग्य होगा? ये हम लोग रूप गोस्वामी के जो रूपानुग वैष्णव रघुनाथ दास गोस्वामी हैं ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग भी उनके अनुगमन करने वाले ऐसे ही इच्छा करेंगे। यदि कामे बन चाहें तो हमारी यही कामना पूर्ण कर दें और कामेश्वर महादेव, और ये विमल कुंड यदि सब देने में समर्थ हैं सब हैं तो बस यही एक प्रार्थना, और कोई दूसरी प्रार्थना है। पादाज्योस्तव बिना वरदस्यमेव नन्नत कदापि समय एकल देवी चाहिए, इत्यादि बहुत सी कामनाएं, किंतु यही मूल कामना। तो ये हमारी कामना पूर्ण कर दें, बस हम लोग समझेंगे यहाँ यथार्थ में कामे बन की ये महिमा है, और यदि नहीं हुई तो हम समझेंगे कामे बन एक साधारण भूमि है, तो ये अपनी लज्जा संभालें। यदि देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं हम कहेंगे जी भाई कामे बन में ये शक्ति नहीं, हम परीक्षा करके देखेंगे। ठीक है ना, मैंने सबके तरफ से ये बतलाया। हम लोग गोवर्धन से चले, गोवर्धन से जब हम चले सखी स्थली है पास ही में गोवर्धन के, सखी स्थली मैंने चंद्रावली जी का स्थान, वैसे गौरी कुंड हमने आप लोगों को दिखलाया, सखी स्थल
कृष्ण की सबसे प्रियाएं दो चंद्राली और श्रीमती राधिका। उसमें चंद्रावली से भी कृष्ण की प्रिया राधा जी को माना जाता है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी को में इतनी निष्ठा है जबरदस्त, वहां पर तो कोई वैमनस्य द्वेष ये सब नहीं है, कुछ भी नहीं, किंतु एक अनुराग का या प्रेम का एक वक्र भाव है, द्वेष नहीं, इसी का एक विकार है प्रेम का, जैसे प्रेम देवचित्ती इत्यादि है। इस जगत में साधु संतों में ही द्वेष ये सब नहीं देखा जाता, तो और सब की तो बात क्या, इसलिए वहां द्वेष नहीं है। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी भावावेश में भजन करते करते देहात्म को त्याग करके लीला में इतने अभिनिष्ठ हो गए, जो उनको ये अभिमान है मैं राधा जी की दासी और कुछ नहीं, ऐसा एकदम अभिमान हो गया है। अब वो राधा जी के पक्षी हैं, इसको कहते हैं स्वपक्ष, और एक होता है विपक्ष। विपक्ष कौन है? चंद्रावली इत्यादि। एक तटस्थ भी है, एक सुहृद भी है। अब यहां पर प्रतिदिन एक चुल्लू मट्ठा पीते हैं बस, और कुछ जीवन में नहीं धारण करते हैं। राधा कुंड समय कैसे ये लोग भजन करते हैं और कुछ नहीं ग्रहण करते, डोर कॉपिन का अतिरिक्त तो कुछ अपना नहीं है, अपने लिए मड़ैया भी नहीं बांधा। हम लोग यदि ब्रज में रहे ना तो पांच घर हम तब तक ठीक कर देंगे, जब वहां से हम माधुकरी ले आएंगे, नरम नरम गरम गरम रोटी उसके यहां से बंध जाएगी। उन लोगों ने ऐसा बांधा? कभी नहीं। किस तरह से जीवन निर्वाह किया? वो रोज इतना सा घोल एक कदम्ब के दोने में लेते थे बस। एक दिन कोई एक व्यक्ति आया, उनको बड़े दोने में कदम्ब के दोने में उन्होंने दिया, और उन्होंने उसको देख पूछा कि भाई कहां से ले आया? तो सखी स्थली से। बस सुनते ही एकदम रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत बिगड़ उठे। देखिए उनमें क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, द्वेष नहीं, आवेश है कहां का? राधा कुंड का और राधा जी की स्वपक्ष का। लठिया उठाई और मारने दौड़े और वो भागा। शरीर में प्राण मन के बल है, दुबले पतले, किंतु भजन की अद्भुत वहां सखी स्थली का ग्रहण है। और उन्होंने एक लिखा ब्रज लीला पव, ब्रज बल ब्रज, उसमें उनको उन्होंने प्रणाम किया चंद्रावली जी को। वो नहीं रहती तो ये लीला ही नहीं होती। राधा जी की वो काय भी हुए हैं, इसलिए राधा जी की उन्नति बतलाने के लिए, वैशिष्ट बतलाने के लिए राधा जी चंद्रावली के रूप में, यदि वो न रहती तो इनकी पराकाष्ठा राधा जी की जो इतनी बड़ी है ये समझ में नहीं आती। इसीलिए विपक्ष तटस्थ सुहृद इत्यादि जितने भाव हैं ये सब राधा जी के, ये सब काय भी हैं। तभी लीला में उनका ऐसा है, नहीं लिया उसको फेंक दिया और मारने दौड़े, नहीं लोग समझ सके, साधारण आदमी इसको नहीं समझेगा। तो ये है सखी स्थली, उसको पार करके हम लोग पाटल ग्राम में आए। पाटल नीम गांव के उत्तर में है, नीम गांव जहां पर की निम्बार का आचार्य थे, और उन्होंने शाम होने के बाद में एक सन्यासी को, सन्यासी मैंने वो जैन संप्रदाय का, वो रात में नहीं खाते हैं, तो उनके घर में पधारे। उन्होंने कहा जी भैया आप महात्मा जी आप खाते हैं क्यों नहीं है? तो अब रात हो गई, अब नहीं खाएं। अब रात कहाँ हुई? देखिए तभी सूर्य है,
देखा तो वह चक्र को आराधना की चक्र के अवतार बतलाया जाता है। चक्र एकदम ऐसा प्रकाशित हुआ जी मानो सूर्य है। जब खा लिया तो उन्होंने चक्र को हटा दिया, अरे हमको ये खिला दिया, नीम के ऊपर में सूर्य को दिखलाया, इसलिए नीम गांव है। हम लोग इसको छोड़ करके आए, ऐसा करने से तो 45 दिन लग जाता कम से कम, नहीं तो 50 दिन लगता। देरावली जबकि वो गोवर्धन से उधर से आ रहे हैं, छठी करा से डेरा डाला था वहां, वो दिग के पहले है जिसको कहते हैं दीर्घपुर। दिग था पहले, उसका नाम था दीर्घपुर। तड्डे रावली ग्राम में सूर्य कुंड, राधिका जी कृष्ण को पाने के लिए, उनको मिलने के लिए सूर्य कुंड में रोज सूर्य की पूजा करने के लिए जाया करती, विशेष करके रविवार को सखिया उनको ले जाती और वहां पर कृष्ण स्वयं ही पुरोहित बन करके आ जाते, बगल में पुस्तक और खड़ाऊ पहन करके और ताल पत्र का छाता लेकर के वहां पर मधुमंगल के साथ में जाते। ये सब का वहां पर वर्णन है, विशेष करके गोविंद लीलामृत में और कृष्ण भावनामृत में। क्यों ना आई, क्यों नहीं आई, ब्रजभाषा है क्यों ना आई। कृष्ण जब चले गए कह गए ये कल नहीं तो परसों जरूर आ जाऊं, तो कल परसों बरसों हो गया नहीं आए। क्यों नहीं आई वहीं पर देख रहे हैं, इसलिए उस गांव के पास ही में एक और ग्राम है जिसको मगहेरा कहते हैं, मगहेरा मगहेरा आज का नाम है मगहेरा, सब मगहेरा। वहां से गठौली है मगहेरा, मगहेरा वहीं से देख, कब आएंगे इसलिए मगहेरा। गठौली राधा और कृष्ण की गोपियों ने गांठ बांधी थी, वहां ये लीला हुई थी, ये गांठौली उसके पास में ही बाजू में ही गुलाल कुंड है, जो आज भी बसंत ऋतु में होली के दिन में उसमें दूध निकलता है, गुलाल लाल रंग निकलता है। वहीं पर कृष्ण ने और सखियों ने होली खेली थी राधा इत्यादि, इसलिए होली का चिन्ह उसमें आज भी लोग जाते हैं उस समय में तो देखते हैं। बहुत से लोगों से वहां से भी सुना है, ग्रंथों में भी लिखा है, यदि कोई परीक्षा करना है तो जा करके देख लेंगे। जैसे मानसी गंगा में दूध की धारा कभी कभी दिखती है, हम लोग अभी साफ करने गए थे तो लोगों ने दिखलाया थे, ये देखिए ये दूध की धारा कभी कभी ये सब दिखती है। बहेज, बहेज मैंने, बहेज एक ग्राम है, बेहाया से बहेज बन गया, बेहाया, बेहाया माने बेलज्ज, निर्लज्ज। इंद्र वहां पर बेशरम होकर के, निर्लज्ज होकर के, हाया रहित होकर के वहां पर वो आए और सोचने मैं कैसे उनके पास में जाऊं, फिर सुरभि को लेकर के आए, इसलिए उस गांव का नाम बेहज है। दीर्घपुर, दीर्घपुर माने दीप। इसके बाद में परमादना, सेतु कंदरा, सेतु कंदरा, सेतु कंदरा इसी को कहते हैं, ये सेतु बंध है ना। अच्छा, और भी सब गांव हैं, इंदरौली, सेऊ, कनोवारो, बद्रीनाथ। नंद बाबा यशोदा जी ने कहा हम बद्रीनाथ का दर्शन करने चाहते हैं, कृष्ण ने कहा ये वृंदावन में तो ये बद्रीनाथ भी आए हुए हैं, केदारनाथ भी आए हैं। बस कृष्ण को लेकर के, कृष्ण ने उन सब को लेकर के वही आदि बद्री कहलाती है। आदि बद्री माने उस बद्री से भी पहले की आदि की है, और यहीं पर सुखदेव गोस्वामी जी ने ये भागवत लिखी, व्यास जी ने, व्यास जी ने यहीं पर लिखी, इसलिए ये आदि बद्री है। जब जाएंगे तो देखेंगे ये वहां पर बद्री नारायण है, एक तरफ में पास में केदार नारायण है, केदार जी हैं, और वो बद्री नारायण है। बद्री नारायण में जैसे कि हरिद्वार है और उसके ऊपर में ऋषिकेश है और सब स्थान है, गंगा जी वहां से आ रही हैं, यहां पर भी मिनी गंगा जी हैं, मिनी गंगा द्वार है, सब वहाँ पर है। वो वैसे ही सब जाने से ऐसे मालूम पड़ता है कि ये सचमुच में ये गिर बद्रीनारायण। और वहाँ से फिर लौट करके फिर जब गिर वहाँ जाएंगे केदारनाथ में, ये काम में बन के पास ही में है, यहाँ से थोड़ी दूर है। यहाँ से हम लोग एक बार गए थे, किंतु वो एक गांव है वहीं तक बस जाती है, इसके बाद में नहीं बस जाती। हम लोग को 2-3 घंटा आने में 2-3 घंटा लग गया, पानी से भरा हुआ था, इसलिए इस बार नहीं गया। यदि भी कल भी मालूम हो जाए तो हम जा सकते हैं, यदि वो गांव तक जाता, किंतु गांव में बसें घूम नहीं सकती हैं, इसलिए कुछ असुविधाएं हैं। हम लोग यहीं से बद्रीनारायण को प्रणाम करें और यहीं से केदारनाथ को भी प्रणाम। ये सब आए हैं ब्रज में ब्रजभूमि की सेवा करने के लिए। उन सबके ये आराध्य हैं, जितने हैं तीर्थ, जितने जो कुछ है सबके मूल हैं ये। प्रयाग एक दिन आए और बोले, मैं तो सब तीर्थों का राजा हूं। नाथ जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ प्रयाग में त्रिवेणी में कभी राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन कभी आए हैं? काम्यवन, पावन सरोवर, विमल कुंड, कुसुम सरोवर सब आए हैं? अब तो नहीं, तो तुम कैसे ये चक्रवर्ती बन गया अपने आप? तो उठ करके भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा, सचमुच में तुम तीर्थ है, मैंने तुमको बनाया तीर्थराज। अपने घर का तो तुमको मालिक नहीं बनाया, मेरा हृदय का तो तुम मालिक ने, हमारा हृदय और मेरा स्वरूप ही है ये धाम वृंदावन, इसका मालिक तुमको नहीं बनाया और सब तीर्थों का बनाया है, इसलिए ये प्रभु का अपना घर है, उनकी सब लीलाओं का स्थल है, इसलिए इसके मालिक वो प्रयाग जी नहीं होंगे। प्रयाग जी, बद्रीनारायण, केदारनाथ और रामेश्वर सब लोग यहाँ पर बना रहे हैं, सब तीर्थों का पूज्य है ये, तीर्थ नहीं कह सकते, इसलिए इसको धाम कहते हैं। और धामों में भी सबसे श्रेष्ठ ये धाम है, इसके बराबर और कोई धाम ही नहीं है, वृंदावन जैसा, ब्रज जैसा। इसके बाद में काम्यवन, काम्यवन मैंने सवेरे बतलाया था, अत्यंत सुंदर मनोहर काम बनेगी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। काम माने मनोहर है, प्रेम का प्रचुर स्वरूप है ये, इसलिए ये काम में बन है, सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण की सारी कामनाएं पूर्ण यहाँ पर हुई हैं, तो जीवों की तो बात ही क्या, ऐसा ये काम में बन। कोई कोई इसको आदि वृंदावन कहते हैं, आदि वृंदावन तो ये कहे तो सभी है, किंतु विशेष करके वल्लभाचार्य ने इसको आदि वृंदावन माना है। और हमारे चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जितने भी हैं शास्त्रों के अनुसार में कहा जी, सो ठीक है ये काम में बन आदि वृंदावन है। तो वृंदावन में जमुना चाहिए ना, तो जमुना यहाँ पर कभी थी है? पहले किधर से बहती थी, किधर से, कितनी दूर? अभी अभी इस समय में यहाँ से यमुना कितनी दूर है, अभी कितनी दूर है, अभी कितनी दूर यमुना यहाँ से है? 36 मील। कितनी धारा कम्बल, दूसरी नदी होगी। तो वहाँ पर वृंदावन में यमुना है, वृंदावन रहता तो रासस्थली थी, वहाँ पर चीर घाट होता, वहाँ पर काली दह होता, वहाँ पर केसी घाट, बंसी बाट ये सब होता, वहाँ पर सेवा कुंज होती, ये सब कहाँ गया? इसलिए ठीक है, होने से भी नहीं बोलने दो, इस तरह से ये वृंदावन चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर के वृंदावन का आविष्कार किया, जहाँ पर काली दह है, जहाँ पर कि वो कूदे थे काली दह पर, वो सूर्य द्वादश आदित्य स्थान है, काली दह है, स्कंदन तीर्थ है, जहाँ पर बंसी बट है, जहाँ पर कि सेवा कुंज है, जहाँ पर की और सब है वृंदावन चौराठी कोर्स वाला सभी वृंदा बृहद वृंदावन है ब्रजमंडल के अंतर्गत माथुर मंडल के अंतर्गत सभी अपने अपने स्थानों का एक महत्व है। इस तरह से यहाँ पर 84 तीर्थ हैं और 84 मंदिर हैं, 84 खंभ हैं। 84 खंभ कहते हैं कि पांडवों का बनाया हुआ ये राज दरबार था, यहाँ पर दरबार लगता था और वहाँ युधिष्ठिर महाराज न्याय करते थे। सुनते हैं कि उनके बाद भी कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जाकर के बैठ जाता था और कोई न्याय की बात होती तो ठीक वो न्याय करता है। अरे समझ में ना, 5,000 वर्ष का कोई इमारत अब नहीं है और रहने की कोई संभावना नहीं, बीच में टीला हो गया था, टीला होने के बाद में उस टीले पर बैठ करके कोई गरेरिया का बालक भेड़ों को चराता था और कुछ में झगड़ा हो गया तो उसको न्याय के वहां पर बैठ करके न्याय एकदम ठीक करता था। कुछ दिनों के बाद गांव वालों को भी मालूम हुआ, गांव वालों में भी वहां पर किसी को बैठा दिया, पूछ दिया तो ठीक वजन करके तुला दंड की भांति में वो न्याय करता। उन्होंने देखा ये क्या बात है, पीछे से पता चला तो फिर से वहां पर ये 84 खंभा बनाया है। किंतु वहां पर 84 खंभा पांडवों का बनाया हुआ ही ऐसा प्रतीत होता है। उसको जिधर से गिनो या तो 85 हो जाएगा न 83 हो जाएगा न 82 हो जाएगा, वो ठीक से गिना नहीं जाता। बहुत से लोग बहुत चेष्टा करते हैं किंतु कुछ न कुछ बढ़ जाता है न कुछ कम जाता है। इस ऐसे 84 खंभा गोकुल में भी 84 खंभा है जहाँ पर कृष्ण का वहां पर जन्म हुआ था और वहां पर नंद बाबा जी का नंद भवन था, उसमें 84 खंभे थे। उसमें से कुछ खंभे अभी पाए जाते हैं, बाकी सब नहीं पाए जाते हैं, किंतु यहाँ पर अभी काफी हैं, कुछ थोड़े थोड़े से गिर गए हैं तो अभी गिनने में बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से यहाँ पर असंख्य कुंड है। यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम लोगों ने कुछ कुछ किया। कल हम लोग कामेश्वर में कामेश्वर जी की कथा, धर्मराज जी की कथाएं भी हम लोग कहेंगे। धर्मराज माने युधिष्ठिर महाराज, यहाँ धर्मराज के रूप में, और वो पूर्व अपने जन्म में साक्षात धर्मराज थे। वो यहाँ पर जो धर्मराज जो पांडवों के जो परिकर थे वो जो धर्मराज हैं इनमें प्रवेश किए हुए हैं। ये मत समझो ये उनमें ये प्रवेश किए हैं जम में, जैसे कृष्ण ही मनमत हैं कामदेव, उनके अंश हैं प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी को कुछ लोग कामदेव कहते हैं, कामदेव नहीं, यथार्थ में मूल कामदेव वो हैं। कौन सा कामदेव? प्रेम के कामदेव, उनकी एक छाया कामदेव हैं, जो रति और कामदेव हैं। ये जगत के जीवों को, बद्ध जीवों के चित्त को मथन करके काम में, ये नरक का कारण है। इसी से सृष्टि अभी चल रही है, कर्मवश जीव होकर के इसमें घूम रहा है, इसलिए सबको मथित कर देता है ये काम। और वो कौन कामदेव हैं? प्रेम को अप्राकृत कामदेव हैं वो प्रद्युम्न जी। वो किसके अंश हैं? पूर्ण विश्व ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांडों के जो नायक हैं वही मूल कामदेव हैं, मनमत हैं। उनके अंश हुए ये प्रद्युम्न जी और उनके छाया अंश हुए कौन? कुछ लोगों की धारणा है कि कामदेव में, ये जो जगत में है जो कामदेव, उनमें प्रद्युम्न जी का प्रवेश हो गया, एकदम उल्टा हो गया। ऐसा हमें कभी मत लेना। बलदेव प्रभु जी शेष में अंतर वो विलीन हो गए, कृष्ण जी नारायण में विलीन हो गए, ऐसा मत सोचना। कृष्ण के जितने परिकर हैं वही मूल हैं, अर्जुन जो कृष्ण के परिक्रमा में उनमें इंद्र प्रवेश किया था और लीला हो जाने के बाद में वो अलग चले गए वहाँ, और कृष्ण अर्जुन कृष्ण की द्वारकापुरी की लीला में वो प्रवेश किया। उल्टा नहीं समझना, जगत में ये सब गड़बड़ी चलती है। शास्त्रों में तीन प्रकार के शास्त्र हैं, चार प्रकार के, सात्विक, राजसिक और श्रीमद् भागवत ये निर्गुण है, इन तीनों से अतीत है। इसलिए जहाँ पर इन विरोध में देखा जाएगा, कुछ लोगों का मनोरंजन करने के लिए पुराणों ने ऐसा किया, ये कृष्ण नारायण के अवतार हैं, कहीं कुछ कह दिया, कुछ कुछ कैसा अवतार हैं, ये सब शुद्ध विचार नहीं। एक बात याद रखना, कभी किसी भी ब्रज के व्यक्ति को, लता गुल्म से लेकर के किसी भी व्यक्ति को, पुरुष हो, स्त्री हो, गोप हो, गोपी हो, ये भगवान कृष्ण है ये कभी विबोध नहीं हुआ। और कृष्ण भी यहाँ पर भूल गए मैं भगवान हूँ, अपनी योग में ऐसे उनको भी आच्छादित कर दिया, उनको भी इस ज्ञान को आच्छादित कर दिया, और सब समय मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, लाला हूँ। राधिका जी स्वयं सर्वशक्ति हो, योग माया के भी मूल हैं, वो स्वरूप शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, किंतु वो भी ये सब भूल करके साधारण बालिका की भांति कृष्ण से प्रेम कर रही है। इसलिए इसमें कभी भी भूल न होने पाए। इन कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त और भी कुछ लीलाएं हुई यहाँ पर, वो लीला जैसे कभी दुर्वासा जी इस स्थान पर आए, जब जुए में पांडव लोग सब हार गए, सब कुछ हार गए, अराज्य इत्यादि भी, और द्रौपदी को नग्न करके के दुर्योधन की गोदी में बैठाने की चेष्टा की गई, अपमानित करके, इसके बाद में फिर डर के मारे वो छोड़ दिया गया और इनको कितना 12 वर्ष का वनवास और एक गुप्तवास के लिए उनको मिला। तो 12 वर्ष में समय में इंद्रप्रस्थ के ये निकट पड़ता है, पासी में खांडव वन है, ये काम्य वन और इंद्रप्रस्थ के बीच में, इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, दिल्ली में कौन सा भाग, नए दिल्ली के अंतर्गत में इंद्रप्रस्थ ही जगह है, वहां पर किले का कुछ अवशिष्ट भाग है पांडवों का। तो वहां से ये लोग निकट में इस गभीर वन में आए, इस कुंड के तट पर आए। उस समय में दुर्योधन ने कहा मनी मन में, ठीक है ये यहाँ पर हैं, इनका अपमान किया जाए, ये लोग दिन ही में होकर के भिक्षा मांग करके किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करते हैं, अपनी सारी सेनाओं को, अपनी स्त्रियों को, ये सब को लेकर के यहाँ पर आए, बड़ा भारी तंबू लगा सामियाना, और यहाँ पर लोग खूब आनंद करने लगे, दिखला रहे हैं कि देखो जो तुम कैसा यहाँ पर भीख मांग करके भी जीवन निर्वाह करता है, और हम लोग किसे शौकीन भाव से यहाँ पर रह रहे हैं। उनको निम्न नीचा दिखलाने के लिए ऐसी व्यवस्था की, और उसी समय में इंद्र को ये बुरा लगा, उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, इस बदमाश को पकड़ लाओ दुर्योधन को। तो उनका सेनापति, मुझे नाम याद नहीं, क्या खैर मुझे याद नहीं, तो वो उनको वहां आए और कौरवों की सारी सेना को परास्त किया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ इत्यादि महारथी थे, सबको परास्त करके, और दुर्योधन को पकड़ करके जब ले चला तो वो रोने लग गया, विलाप करने लगा। उसको रुलाई सुन करके युधिष्ठिर महाराज जी के कान में आई, धर्मराज जी के, उन्होंने कहा, भीम को बुलाया, भीम देखो तो हमारा भाई मालूम है दुर्योधन जी, दुर्योधन नहीं सुर्योधन जी हैं, इनको बचा करके ले आओ। भैया मैं नहीं जाता, मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि इन लोगों की भुजाओं उखाड़ूंगा, और जिस पैर पर बैठाने की चेष्टा की थी जंगे पर गदा से चूर्ण विचूर्ण करके उसके रक्त से द्रौपदी का केस बंधन करूंगा, तब तो मैं भीम नहीं तो भीम नहीं, और मैं इसको रक्षा करने के लिए जाऊंगा। मैं तो उसके तरफ से उसके विरुद्ध पकड़ करके इसका और भी यहीं पर वध करूंगा। बोले जाए ऐसा मत करो भाई, दूसरों के लिए हम लोग परस्पर कुछ है देश शत्रु, वो शत्रु माने हम शत्रु नहीं मानेंगे, इसलिए एक बात कर भीम, अर्जुन तुम जाओ, तुमको आदेश देता हूं। उन्होंने आदेश दिया अर्जुन को, और अर्जुन गांडीव लेकर के और यहीं से ऐसा संधान किया जो एकदम सबको परास्त करके सीढ़ी बना दी और उनको वहां से एकदम नीचे उतार लाया। जब आया तो दुर्योधन को लेकर के अर्जुन महाराज धर्मराज के पास में, वो बड़ा लज्जित हुआ और बोला मनी मन में कहता आज हमारा जैसा अपमान जगत में नहीं हुआ, उसे मर जाना अच्छा था किंतु ये अपमान सहना नहीं है, मैं इसका बदला लूंगा। ये कह करके गया और अर्जुन कुमार से थोड़ी सी बात करके और लौट गया। द्रौपदी जी उस समय उनके तरफ में देख रही हैं, कितना अपमानित हुआ है ना, इसी बलबूते पर तुम हम लोगों का पांडवों का अपमान करता है। तब उसको बहुत ग्लानि हुई, बोला अच्छा अच्छा हम देखेंगे, मैं भूल नहीं सकता तुम्हारी बात को, जो अंधा का पुत्र अंधा होता है, बदला नहीं, मतलब उसकी भलाई की रक्षा की और वो दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते है, तो साधु लोग अपनी दुष्ट अपनी शिष्टता क्यों छोड़ेंगे। ये ही पर हुआ था। और भी एक बात, दुर्वासा जी को बहुत सेवा की दुर्योधन ने, और उनसे प्रार्थना कीजिए प्रभु आप हम पर संतुष्ट हैं तो एक वर दीजिए, आप अभी कामे वन में जाइए और पांडव लोग वहां पर भय, द्रौपदी जब खा ले बर्तनों को मांज दे और उलाट करके रख दे तो आप तीन पहर के समय में जाएंगे जब उनका भोजन समाप्त हो जाए। वो जानता था कि उसके पास में सूर्य की दी हुई एक बटलोई है, जब तक रहेगी वो बटलोई उसमें रसोई कर दिया कुछ थोड़ा सा भी, और लाखों आदमी आते जाएंगे उनको देते जाएगी वो कम नहीं होगा, किंतु जब अपने आप खा लेगी और उसका हाथ धो करके उसको मांज करके रख देगी तब फिर कुछ नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा जाए वो मस्तु ऐसा ही होगा। कामे वन में आए, पांडव लोग वहां पर थे, सात वन का निकाल करके और सात आज रसोई बनी, और उसी से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ठाकुर जी को भोग दिया और वो साथ खाए सभी लोग। अंत में जब इनका हो गया, अतिथियों को बुलाया, अतिथि इत्यादि का अभ्यागत करके तब फिर अपने खा करके फिर बटलोई को माजा और उलाट करके रख दिया। उसी समय दुर्वासा जी अपने हजारों साठ हजार शिष्यों को लेकर के वहां पर पधारे और बोले जी मुझको भूख लगी है, अभी मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद खाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज जी बड़े चतुर थे, सोचा जो कुछ समय से निकल आए जो क्या किया जाएगा, तो जो आप विमल कुंड में स्नान करके पधारिए, आपके लिए रसोई तैयार है। सोचते थे कि जरूर द्रौपदी है यहाँ, कृष्ण भी जरूर आएंगे, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। स्नान करने के लिए गए, इतने में द्रौपदी जी को उन्होंने बुलाया, प्रिय अब तो जीवन मरण तुम्हारे हाथ में है, श्याम को बुलाओ, यदि तुम्हारी साड़ी दे करके तुम्हारी लज्जा रखी है तो इस विपत्ति से वही रक्षा करते हैं। बस हे गोविंद राण अब तो जीवन हारी, जो ही पुकारा आंख के आंसू आए और श्याम वहां पर उपस्थित हो गए, मुस्कुराते हुए बोले बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, आज कुछ खाया नहीं, पहले कुछ खिलाओ द्रौपदी सखी। निका जी मैं इसी के लिए तो तुमको बुला रहा हूँ, और तुम्हें अब तुम हूं तो भूख लग गई, नहीं कुछ को खिलाओ इसके बाद में जैसा देखा जाए, हमारे पास में कुछ है नहीं। अरे अपनी बटलोई तो ले आ, काजे कुछ में है नहीं, मैंने तो साफ कर दिया तो ले आ, तो ले आई, उसको देखा बड़ी गौर से और उसमें कोई तिनका अभी लगा हुआ था, पूरा साफ नहीं हुआ, तिनका एक लगा था। उन्होंने नख से उसको तिनका को लाया और मुख में दे करके और पानी पी लिया और बोले जब क्या बोले तृप्तोस्मी तृप्तोस्मी, और देखा राजा उन सबके यहाँ पर स्नान कर रहे थे, पेट खुल करके तुम्बा हो गया और ढेकार आने लगे, खाने की जगह नहीं रही, अब मरने लग गए। देखा जैसे भीम आ रहा है गदा लेकर के, और यदि नहीं गए और उसकी रसोई सब बिगड़ेगी तो ये भीम गदा चला देगा। और उनको याद आई हमने अम्बरीश की बात, हाँ ये अम्बरीश के समय में हमारी कितनी दुर्गति हुई, मुझे याद है। ये पांडव लोग शायद कम नहीं है, उनसे कहीं हमारे ऊपर में विपत्ति ना आए, फिर चक्र न छूट जाए, फिर इस बार रक्षा ही नहीं होगी। इसलिए वहीं से सबको लेकर के और ऐसे रज भूर भुआ सह महाजाना पार करते हुए भारतीय लोक में पहुंच गए, ऐसे उनकी रक्षा की। एक और भी यहाँ पर है कथा महाभारत वाली, जिसमें यहाँ पर आ रहे थे तो पासी में वहां से अर्जुन का वहाँ पांचों पांडवों का वहां पर डेरा था। पांचों पांडव लोग कहीं किसी काम से निकल गए हैं, भिक्षा के लिए या किसके लिए निकल गए हैं, किसी काम से, कोई वहां पर नहीं है, अकेली द्रौपदी जी हैं। वो पानी भरने के लिए विमल कुंड में आ रही थी और इतने में दुर्योधन से मिलता हुआ और जयद्रथ उसके कुपरामर्श से यहाँ पर आया। और देख रहा था जब अकेले रहे तो वो पानी भरने के लिए जा रही थी, द्रौपदी को देखा, द्रौपदी को देख करके वो निकट आ गया। इन्होंने देखा कि हमारे ये कौन है, जीजा जी लगे हैं ना क्या, नंदोई ननद के ये पति नंदोई, इसलिए आओ भगत उनका किया, आइए बैठिए पानी पीजिए, अभी मैं आ रही हूँ पानी भर करके, हमारे पति लोग भी आ जाएंगे, आप वहाँ पर बैठिए। किंतु वो हंसी मजाक करने लगा, उन्होंने सोचा जैसे वो थाली में और उसमें तो ऐसा ही होता है, उससे पहले तो ध्यान नहीं दिया। अंत में उसने जबरदस्ती उनको पकड़ करके और अपने रथ पर बैठा दिया और रथ खूब जोर से चला। अब तो ये रोने लगी, गाय बहुत उनको डांटा फटका